ओम शांति। हमारे बीच डॉक्टर सविता दीदी आए हैं और डॉक्टर सविता दीदी दादी जी के साथ अंग संग रह के उनकी सेवाएं की हैं और अनेक देशों में आपने सेवाएं करते हुए बाबा की अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश भी पहुंचाया है और आप महिला विंग के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर सविता दीदी का आज हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के कैसे अनुभूति करें उस टॉपिक ऊपर हम आज दीदी जी का क्लास सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हम सब बाबा के राजयोगी बच्चे हैं, तो जब हम योग कहते हैं तो योग का मतलब ही है संबंध। तो बाबा से संबंध का अनुभव करना ही योग है। और जब हम राजयोग कहते हैं तो उसका मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उनके साथ हमारा संबंध। तो स्वयं परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, उनसे हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसी का कोई बड़े आदमी के साथ संबंध होता है तो उनको विशेष गर्व होता है उस बात का, या एक विशेष खुशी होती है कि ये हमारे संबंधी हैं। मानो कोई अच्छी पोस्ट वाले हैं, मिनिस्टर हैं, या समझो प्राइम मिनिस्टर के संबंधी हैं, बच्चे हैं, या राष्ट्रपति के हैं, तो उनको उनसे ज्यादा खुशी होती है। तो हमारा भी संबंध किससे है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो पूरे विश्व का मालिक है, उसके साथ हमारा संबंध है। तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है कि हमारा संबंधी कौन है। फिर भक्ति में भी हम गाते आए भगवान के लिए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, या तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो गाते थे लेकिन वो अनुभव नहीं था, लेकिन अभी डायरेक्ट बाबा हमें सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। और हम कहेंगे कि बाबा ने खुद ही ऑफर किया है कि अब मैं आया हूं, तो जैसे हम कहते थे भक्ति में, आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, तो अभी डायरेक्ट मेरे से ही आपके सर्व संबंध है। तो अब हम महसूस करते हैं कि वो हमारा मात पिता है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सतगुरु है। तो हम संबंधों में क्यों रहते हैं? क्योंकि संबंधों में हमें प्राप्ति होती है। बिना संबंधों के तो हमारा जीवन चलता नहीं। तो परिवार में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें प्यार मिलता है, सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ये सब प्राप्तियां हमें बाबा से भी होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जो मनुष्य हैं, जिनसे हमें प्यार मिलता है, सुख मिलता है, वो परिवर्तनशील है। इंसान जो है वो जैसे ही उसकी परिस्थिति बदलती है या मनस्थिति बदलती है, तो जो प्यार करता है वो नफरत भी कर सकता है, जो सुख देता है वो दुख भी दे सकता है। जो सम्मान करता है वो हमारा अपमान भी कर सकता है। हम सब अनुभवी है ना, हम सभी संबंधों में रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मनुष्यों का प्यार स्वार्थ का प्यार है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है आपसे, तब तक वो आपसे संबंध रखते हैं, आपको प्यार करते हैं। और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ, कई बार तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि हम आपको जानते भी हैं। ये भी स्थिति होती है, चाहे इतनी ना हो लेकिन फिर भी वो प्राप्ति फिर हम अनुभव नहीं करते। लेकिन शिव बाबा भगवान वो सदा ही दाता है, वो सदा ही प्यार का सागर है, वो सदा ही सुख दाता है, वो सदा ही शांति देने वाला है। तो इसीलिए तो हम जब दुख होता है तो हम किसको याद कर रहे होते हैं, किसको याद कर रहे होते हैं, है ना, शिव बाबा को ही हम याद करते हैं। तो बाबा हमें जो प्यार देते हैं, जो ईश्वरीय स्नेह हमें मिलता है, अभी मुरली चली पूरी बाबा की प्यार के ऊपर, कि वो प्यार निस्वार्थ प्यार है जो दुनिया में और कोई हमें नहीं दे सकता। भगवान के प्यार ने ही हमें ब्राह्मण बनाया है। आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि बाबा के उस प्यार का हमें अनुभव हुआ है। उस प्यार ने ही हमसे पुरानी दुनिया का त्याग करवाया ना। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, या पुरानी दुनिया को भूल, किसे याद करो। तो किसकी शक्ति से वो दुनिया को हम भूल पाते हैं, न्यारे हो पाते हैं? बाबा के प्यार की शक्ति ने हमें सहज ही दुनिया से न्यारा बनाने की वो पावर दी। जैसे हम सुनते हैं ना ओम मंडली में, सब जो थे उस समय वो सब बहुत अच्छे घरों के थे, लेकिन सब अपने घर छोड़ छोड़ कर भागे। तो क्यों छोड़ कर भागे, क्या मिलता है? तो प्यार में इतनी ताकत है कि भगवान का वो जो प्यार मिला उसने वो सब सहज छुड़वा दिया। दुनिया में भी देखते हैं कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है मानो, तो फिर वो क्या करते हैं, उस प्यार में अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो जो माँ बाप ने जन्म दिया, जो माँ बाप ने परवरिश की, है ना, इतना सब बड़ा किया, और फिर क्या हो जाता है? तो प्यार में इतनी ताकत है कि प्यार जो है वो कुछ भी त्याग करवा सकता है। तो आज हमने भी जो कुछ भी त्याग किया ना, बाबा तो वास्तव में हमें भाग्य देता है, त्याग की तो बात ही नहीं है ब्राह्मण जीवन में, और ही हम भाग्यवान बन जाते हैं। लेकिन बाबा के प्यार की शक्ति से तो सभी को बाबा के प्यार का अनुभव है। जो भी यहाँ बैठे हैं, जो समझते हैं हाँ बाबा के प्यार का हमें अनुभव है, वो हाथ उठाएं। देखो सभी को अनुभव है, तभी यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं ना, कौन से इतना दूर दूर का सफर करके आते हैं, तो कौन से प्लेन में आते हैं या कौन सी ट्रेन में आते हैं, कौन लेकर के आता है? तो वो प्यार खींच करके हमें यहाँ लेकर के आ जाता है। फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी भी हम परवाह नहीं करते। तो ये जो प्यार है, बाबा का जो प्यार है, वो प्यार एक होता है दिल से। हमारा जो बाबा के प्रति प्यार है दिल से है या दिमाग से है? दिल से। दिल से है तब अनुभव होता है। एक ज्ञान है हमको, शिव बाबा हैं, परमात्मा हैं, और उनसे योग लगाते हैं हम। एक दिमाग से एक नॉलेज है, लेकिन एक है अनुभव है। बाबा से उन संबंधों का हम अनुभव करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं है कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, तो फिर तीन तरह से हम प्यार करते हैं। एक तो हम प्यार करते हैं, दिल से स्नेह करते हैं। दूसरा है हम उस स्नेह को निभाते हैं। और तीसरा है बाबा के स्नेह में समा जाते हैं, जिसको बाबा ने मुरली में कहा लव में लीन होना, है ना। तो बाबा ने दो बातें कही कि एक तो हम लवली बने हैं, तो लवली तो सभी हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि नॉलेज तो हम सभी को है, लेकिन लवलीन बाबा के स्नेह में समा जाना, यानी इतने समीप हैं बाबा के कि उनकी याद हमें भूलती नहीं। जिनसे बहुत स्नेह होता है वो भूलते नहीं, भूलना चाहते हुए भी वो भूलते नहीं हैं, उसको हम लवलीन कहेंगे। तो क्या ऐसा स्नेह है हमारा बाबा के साथ? बाबा तो हमें करते हैं। बाबा ने कहा ना, कोई भी बच्चा है मेरा, चाहे उसके अंदर कितने भी गुण हैं, अवगुण हैं, कमजोरी है, लेकिन मेरे लिए तो वो लाडला है, सिकीलेदा बच्चा है, कोटों में कोई बच्चा है। बाबा के प्यार की नजर कभी नहीं बदलती। लेकिन बाबा के प्रति हमारा प्यार कैसा है? अब प्यार करने वाले कौन है? समय पर याद करते हैं, है ना। जब कोई मुश्किल आती है तब बाबा याद आ रहा है, हाँ, कोई विघ्न आ रहा है तब बाबा याद आएगा, बाकी भूले रहेंगे। फिर वो स्नेह को निभाने वाले, हाँ, कोई बाबा की सेवा है, हाँ, तो हम हाजिर हैं। ऐसे समय पर आवश्यकता है तो हम, संबंधों में ऐसे होता है आवश्यकता के समय हम काम आते हैं तो हम हाँ करते हैं और हम वो सेवा करते हैं बाबा की, तो वो निभाते हैं। लेकिन सदा ही कोई ना कोई संबंध से बाबा मुझे याद है ही है, जिसको हम कहेंगे निरंतर योगी, बाबा मुझे भूले नहीं। फिर बाबा की मदद का भी हमें अनुभव होता है। जितना हम बाबा से संबंध का अनुभव करते हैं उतना ही समय प्रति समय आवश्यकता है हमें, तो बाबा की मदद सभी के अनुभव हैं हम सबके। तो मैं भी एक अनुभव, जो मेरा ऐसे बहुत से अनुभव हैं, लेकिन कुछ कुछ अनुभव हमारे बहुत विशेष होते हैं कि कैसे बाबा हमारे लिए हमेशा हाजिर होते हैं जब हमको उनकी जरूरत है और हमने याद किया प्यार से बाबा को। तो ऐसे ही हम एक बार सेवा से आ रहे थे, तो फ्लाइट से आना था, और फ्लाइट ऐसे थी वाया, जैसे होता है ना, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी अहमदाबाद तक, वाया होकर के, वाया कलकत्ता होकर के आना था। तो हम वेट कर रहे थे, बोर्डिंग पास मिल गया, और बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम गेट पर, जहाँ से फ्लाइट में बोर्डिंग होता है वहाँ जाकर बैठते हैं गेट पर, तो वहाँ बैठे थे तो देखा कि फ्लाइट लगी नहीं है। तो कई बार फ्लाइट लेट भी होती है, तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि वो साइलेंट एयरपोर्ट, कोई कोई एयरपोर्ट्स पे अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं, वो मैसेज डालते हैं, और हमें वो पता नहीं था उस समय। तो हुआ ये कि उसका गेट चेंज हो गया और फ्लाइट तो अपने टाइम पर आ गई लेकिन दूसरे गेट पर आ गई, और हम देख रहे हैं कि फ्लाइट आई नहीं है, हम वहीं बैठे हैं। तो मन में यही सोच रहे थे कि लेट हो गई शायद फ्लाइट, लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का टाइम हो गया तो हमको एक कॉल आई। जब टिकट बुक करते हैं ना तो वो फोन नंबर ले लेते हैं, तो उनके पास नंबर होता है, तो कॉल आई कि आप अगर कहाँ भी हैं एयरपोर्ट पे तो तुरंत इस गेट पर आ जाइए ना, बोर्डिंग क्लोज होने वाला है। तो हमने कहा हम तो गेट पर ही बैठे हैं, तो उसने कहा नहीं इस गेट पर ये गेट चेंज हो गया, आपको पता नहीं? तो हमने कहा नहीं हमें तो नहीं पता। तो फटाफट वहां से उठे और उस गेट पर जाना है जहां पर फ्लाइट है। तो हुआ ये कि जल्दी जल्दी में एक बैग रह गया, छोटा बैग था वो रह गया, और वहां पहुंचे तो देखा कि बोर्डिंग पास ही नहीं है, तो बोर्डिंग पास कहाँ है, तो जो बैग रह गया उसमें बोर्डिंग पास है। अब बिना बोर्डिंग पास के तो एंट्री नहीं होगी। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया, वो बहन जो एंट्री करा रही थी, कि एक दो मिनट लगेंगे, हम ले आते हैं, वहाँ छूट गया। उसने कहा नहीं, आप पहले ही लेट हो, अब आप अंदर नहीं जा सकते, है ना, अभी एक मिनट भी हम आपको नहीं दे सकते। तो कितना भी रिक्वेस्ट किया वो मानी नहीं, तो आखिर फिर हमने छोड़ दिया। फिर गए जाकर के अपना बैग लिया, तो देखा वो फ्लाइट तो निकल गई, वहां से रनवे पर चली जाती है फ्लाइट। फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा हम तो एक घंटे से यहाँ बैठे हैं और हमें तो पता ही नहीं था, और ये फ्लाइट जो है वो यहाँ से निकल गई। अब कलकत्ता में गैप था, माना यहाँ कलकत्ता से फिर अहमदाबाद आना था, तो 3-4 घंटे का गैप था। तो चलो कोई दूसरी ही तुरंत जाने वाली हो वो करके भी हम पहुंच जाए, क्योंकि हमारा सामान भी तो चला गया उसमें, वो पहले से ही चेक इन हो जाता है। तो मैं ऐसे सोच रही थी, और फिर मैंने वो बहन से बात की, मैंने कहा कोई नेक्स्ट फ्लाइट जाने वाली है कलकत्ता, आपकी ही कोई एयरलाइन की फ्लाइट अगर जाने वाली है तो आप बता दो, तो हम वो टिकट लेकर के पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी वहां से फिर जो है वो 2-3-4 घंटे के बाद है, तो हमें वो मिल जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, हमारी तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा फिर हम देखते हैं। तो फिर उसने पता नहीं कुछ फोन वोन किया, फिर उसने मुझे रुकने के लिए कहा, उसने कहा आप रुको, मैं जब तक नहीं कहती हूँ तब तक आप यहीं रुको। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या करेगी, फिर मुझे लगा शायद ये कोई दूसरी एयरलाइन से बातचीत करके हमारे लिए कुछ प्रबंध करेगी या कुछ ऐसा मतलब। तो फिर उसने 2 मिनट के बाद हमें कहा कि आप लोग मेरे साथ आओ, मेरे साथ एक और भाई भी थे, तो हम लोग गए वहां पे उनके साथ, और उसने अपनी एयरलाइन ऑफिस के बाहर हमें बिठाया और बोला जब तक मैं नहीं कहूँ आपको यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है। तो हम बाबा को ही याद करे थे कि बाबा अब आपको पहुंचाना है, आप जानो कि ये अचानक मतलब कैसे गलती हो गई, कैसे रह गया कि हमें पता ही नहीं चला कि फ्लाइट का गेट चेंज हो गया। और 10 मिनट के बाद वो बहन आती है और वो बोलती है अब आप लोग मेरे साथ आओ। तो हम उसके पीछे पीछे गए और उसने हमें फिर से सिक्योरिटी चेक कराया सारा। फिर सिक्योरिटी चेक के बाद वो सीधा हमें गेट से बाहर लेकर के गई, जो एयरलाइन का बोर्डिंग गेट होता है उससे बाहर लेके गई, जहाँ पे फ्लाइट्स खड़े होते हैं। तो मेरे को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कहाँ बताया, कुछ भी नहीं रही है, सीधा लेके जा रही है। और फिर जब वहां देखा तो देखा वही फ्लाइट जो हमको छोड़ के चली गई थी वही वापस आ गई। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा हम एक मिनट कर रहे थे कि 1 मिनट में मैं लेकर के आती हूँ, और अभी आधा घंटा हो गया, अब आधे घंटे में घूम फिर के वो फ्लाइट हमें लेने के लिए आई। और फिर हम चढ़े तो फ्लाइट तो फुल थी एकदम, तो वो ऐसे ही होता है कि कोई VVIP चढ़ते हैं उसके लिए, तो सारे पैसेंजर्स हमें देख रहे हैं कि ऐसे कौन है जिनके लिए फ्लाइट जो है रनवे से घूम करके यहाँ आई है। तो ये बाबा की कमाल है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने बाबा के ऊपर निश्चय रखा, बाबा के ऊपर छोड़ा, तो बाबा ने उनको टच किया या जो भी बाबा ने वो कराया, और हम उसी फ्लाइट में फिर गए। तो ऐसे बाबा की मदद हमें अनुभव होती है समय पर। तो ऐसे हम सबके अपने अपने अनुभव है, आपसे पूछेंगे तो आप सबको भी, आप भी बता सकते हैं कि बाबा कैसे हमें समय पर मदद करते हैं। तो ये संबंध है, उसके आधार पर ये अधिकार है हमारा बाबा के ऊपर। तो बाबा से हम माता पिता के संबंध का अनुभव करते हैं, तो जो पालना हमें मिल रही है, जैसे माता पिता पालना देकर के बच्चों को योग्य बनाते हैं ना, उन्हें जीवन जीना सिखाते हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं, ऐसे ही बाबा भी हमें योग्य बना रहे हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाएं, फिर से हम अपने श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की प्राप्ति हम करें। बाबा समय पर हमारे लिए हाजिर हैं, हमें निश्चिंत रखते हैं। बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया, जैसे बच्चे होते हैं वो माँ बाप को अपनी बातें कह करके खुद निश्चिंत हो जाते हैं ना, उनको कोई भी बात हो जाएगी तो किसको आकर के सुना देंगे, माँ को सुना देंगे या अपने पिता को कह देंगे और फिर अब वो जाने और खुद फिर खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात किसको दे दी। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आप बच्चे अपना कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बाबा को दे दो जो भी हमारे बोझ हैं। और बाबा ने हमें अपना वर्षा दिया, बच्चा जो है वो अधिकारी होता है, तो हम बाबा के खजानों के मालिक हैं। तो बालक सो मालिक बाबा ने हमें बनाया है। और अमृत वेले हम इस संबंध का विशेष अनुभव कर सकते हैं, बाबा की जो पालना का अनुभव है, क्योंकि बाबा अमृत वेले सब गुणों से सब शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो जैसे माता पिता बच्चों को हर तरह से तैयार करते हैं, ऐसे ही बाबा भी हमें, वो हमें विशेष समय बाबा ने दिया है उस पालना का अनुभव करने का। तो अगर अमृत वेला हम उठते हैं तो वो माता पिता की सहज पालना हमें मिलती है। फिर शिव बाबा हमें शिक्षक बनकर के पढ़ा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो कोई भी हमें नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता है कोई दुनिया में? कोई भी वेदों में शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं, कोई गुरु हमें ये ज्ञान नहीं दे सकता जो तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। बाबा हमें रोज रोज पढ़ाते हैं, कोई दिन छुट्टी नहीं लेते बाबा। जैसे दुनिया में तो होता है ना कि कोई ना कोई दिन की छुट्टी होती है, और कितनी दूर से बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, माना अथक जिसको हम कहेंगे, कभी भी उनको थकावट नहीं होती कि आज ये है आज वो है आज नहीं पढ़ा सकते। तो इतना अद्भुत टीचर है बाबा हमारा। और फिर कितना नशा होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, जैसे कहा ना किसके साथ हमारा संबंध है। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं बाबा के। बाबा कहते हैं आपकी ये पढ़ाई लास्ट तक, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। हमारी ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है और इस पढ़ाई की प्राप्ति जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है, एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं। ये लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म ही हमें वो पढ़ाई का फल मिलता है, लेकिन ये पढ़ाई हमें आने वाले 21 जन्मों की तो गारंटी है, लेकिन और भी पूरे कल्प भी इस पढ़ाई की प्रारब्ध हमारे साथ होगी। तो फिर इस पढ़ाई को हमें कितना एक्यूरेट पढ़ना चाहिए, कैसे स्टूडेंट हों हम बाबा के, पढ़ाई में रेगुलर और पंचुअल, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा हमें ये कई बार अंडरलाइन कराते हैं। तो अगर हमने एक दिन मुरली मिस की, माना कितने राज की बात बाबा हमें मुरली में बताते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कोई राज हमारा मिस हो जाए, है ना। तो इतना रेगुलर है, या हम जैसे आज के समय में क्या है, हमें सब मुरली मिल जाती है, टीवी में मिल जाती है, मोबाइल में मिल जाती है, तो हम संडे के संडे सेंटर पर आकर मुरली सुन लेते हैं, बाकी तो हम घर में पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं। तो घर में मुरली पढ़ना और सुनना और सेंटर पर आकर के सुनना फर्क होगा नहीं होगा? खुद ही महसूस करते होंगे, चलो कोई मजबूरी है तो बाबा भी छुट्टी देते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है या अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो भी हमें मिस तो नहीं करनी है, फिर भी घर में पढ़नी है, लेकिन पूरी एकाग्रता से। नहीं तो ऐसा होता है, आप मुरली सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर और किसी ने फोन किया, आपने फोन भी अटेंड कर लिया, फिर मुरली सुन रहे हैं, फिर किसी ने दरवाजे पे बेल बजाई, आपने बेल भी जाकर खोल दी, सामने वाले को अटेंड कर लिया। हाँ, या कोई आकर आपसे बात करने लग गया, उसी समय आप मुरली सुन रहे हैं तो आपने उसकी बात का जवाब भी दे दिया। हाँ, या कोई रसोई का काम आपको याद आ गया तो आप रसोई में भी चले गए अपना वो काम करके, फिर मुरली। अब कितनी मुरली सुनी, कितना होता है ऐसा। इवन जो बहनें अपनी सेंटरों पर सेवा में रहती हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कितनी बार कि मुरली सुनते समय कुछ ना कुछ, कोई ऐसी फोन आ गया, कोई ऐसा सेवा की बात आ गई, तो हमारी आधी मुरली जो है वो उसमें ही निकल जाती है, पर हम खुश होते हैं, हाँ हमारा नियम है मुरली सुनना है, वो तो हमने सुन ली। तो इसको बाबा पंचुअल होना नहीं कहते हैं। और वो कितनी हमारे अंदर जाएगी, कितनी हमें याद रहेगी। यूं भी बैठ करके भी हम सुनते हैं तो भी मन कितना एकाग्र होता है, हाँ बीच बीच में हमारा मन इधर उधर चला जाता है, तो फिर ऐसे हम मुरली सुनेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं, और कुछ भी याद नहीं तो वो क्या हमारी धारणा में होगा। तो फिर हम सिर्फ ज्ञान ही सुनते हैं, जैसे भक्ति में सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग किया और वहां की वहां रही, तो वो वाला हिसाब होता है कि सुन लिया बस। लेकिन जो बाबा हमें कह रहे हैं, आप हर रोज बाबा की धारणा की पॉइंट होती है, आप जैसे एक बाबा की धारणा की पॉइंट है हमारी वाचा के लिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तो ये हमारी धारणा हुई। हम अंतर्मुखी बने हैं, माना बाबा कहता है कि जब आवश्यकता है तभी बोलो, आवश्यकता से अधिक नहीं। अगर 10 शब्दों में कोई बात कहनी है तो 10 शब्दों की बजाय 2 शब्दों में मेरा काम हो जाए, उस वाणी की भी बचत करनी है हमें ना, वो भी हमारी शक्ति जमा होती है। तो कईयों को बहुत बोलने की आदत होती है, बोले बिना रह नहीं सकते, लेकिन क्यों बाबा हमें बीच बीच में मौन रहना सिखाते हैं, जब हम भट्टियां करते हैं तो हमें मौन रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जितना हम अंतर्मुखी होंगे उतना हम बाबा के समीप होंगे। अंतर्मुखता की स्थिति में ही हम अपने आत्मिक गुणों का अनुभव करते हैं। अंतर्मुख होना, जैसे कहते हैं एक बाह्य मुख, बाह्य मुखता होता है बोलना, और अंतर्मुख माना अपने भीतर हम जाकर के आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके, और फिर आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक प्रेम, इसका हम अनुभव करते हैं। और बाबा का प्यार भी कब अनुभव होता है, जब हम न्यारे हैं, जब हम देह से न्यारे हैं तभी हम बाबा के प्यारे हैं। अगर कभी हमें बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता, जैसे कोई कोई कहते कभी कभी बाबा का प्यार अनुभव होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तब हम देह से और देह की दुनिया से न्यारे नहीं है, तो बाबा के प्यार का अनुभव भी फिर हमें नहीं होता है। तो ये अंतर्मुखी होना, ये हमें बाबा के समीप लाता है। फिर धीरे बोलना है ना, रॉयल लोग होते हैं, उनकी आवाज, उनकी भाषा कैसी होती है ना, तो वैसे ही हमारा, क्योंकि हम भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। फिर मीठा बोलना है, सुख देने वाला, जो बोल दूसरों को सुख पहुंचाए, दूसरों को सुकून दे, हिम्मत दे। बाबा हमें कितनी बार ये बात कहते हैं, लेकिन हमारी वाणी कड़वी कब होती है, जब हम गुस्से में आते। तो कहने का भाव क्या है, जो शिक्षाएं बाबा ने दी हमें वो हमारा जीवन उसका स्वरूप हो, तब कहेंगे कि हमने उसको प्रैक्टिकल किया। नहीं तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं दुनिया में, है ना, थ्योरी पढ़ना और उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको हर बात का प्रैक्टिकल कराया जाता है, उनको प्रूफ दिखाया जाता है कि देखो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो आपको बताया है ये ऐसा है। तो साइंस तभी मानती है ना, तभी वो प्रमाण मिलता है उसका। तो हमारा जीवन ही हमारे ज्ञान का प्रमाण है, बाबा कहता है ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभाव कब पड़ता है? आज की मुरली में था ना, एक छोटा बच्चा भी ज्ञान सुना सकता है। ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने विशेष हमारा ध्यान खिंचवाया, तो जीवन बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप तभी बनेगा जब हम अपनी पढ़ाई को बहुत रेगुलर और पंचुअल रूप से पढ़ेंगे। और वो दादियों को हमने देखा, बड़ी दादी जी को हम देखते थे, दादी चार बार मुरली पढ़ती थी। इसीलिए बाबा कहता है मुरली से प्यार माना मुरली धर से प्यार। बाबा की पढ़ाई से जितना प्यार है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे तो पढ़ाने वाला याद आएगा, उस पढ़ाई को रिवाइज करेंगे तो भी कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा ना, तो उतना ही हमारा बाबा से प्यार जुटा रहेगा। और इसीलिए केवल पढ़ना नहीं, लेकिन उसको मनन करना, उसको ज्ञान को अपना बनाना, फिर उस तरह से फिर हम उस ज्ञान को यूज कर पाते हैं। फिर बाबा हमारे सतगुरु हैं, बाबा जैसा गुरु कोई है नहीं, बहुत गुरु हैं दुनिया में, है ना। और गुरु क्या करता है? आत्मोन्नति का मार्ग बताता है ना, उस उन गुरुओं के लिए कहते हैं, वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, माना गति सदगति का ज्ञान देते हैं। लेकिन बाबा तो सही अर्थों में हमें गति सदगति में ले जाते हैं, परम धाम का रास्ता बताते हैं, वो मुक्ति है, और सुख धाम ले जाते हैं, सतयुग में ले जाते हैं, वो हमारे लिए सदगति है। तो गुरु के प्रति सदा श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए, तभी गुरु का वर्षा मिलता है ना। उन गुरुओं में भी ऐसे है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखते हैं। और ऐसे ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए, सुनते हैं ना हम, कितने गुरु किए बाबा ने? 12 गुरु किए बाबा ने। और हर गुरु के प्रति, जो भी गुरु था बाबा का इतना भाव था कि वो अचानक आधी रात को भी अगर बाबा को बुला लेंगे तो बाबा कभी सोचेंगे नहीं कि अभी आधी रात है, सुबह चला जाऊंगा। तो एक इंसिडेंस बाबा की हिस्ट्री की बुक में आता है कि उनके पोते का जन्मदिन था और घर में पार्टी, क्योंकि नेचुरली बाबा का जो उठना बैठना था वो काफी अच्छे लोगों से था, तो घर में बच्चे की जन्मदिन की पार्टी रखी थी और उनको निमंत्रण भी दिया था। और उसी समय बाबा को अपने गुरु का तार आया कि तुरंत आ जाओ। तो बाबा ने यशोदा मैया को कहा कि मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा, बाबा आज जन्मदिन की पार्टी रखी है, आपके कारण इतने लोग आने वाले हैं और आप नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो बाबा ने कहा, जो भी हो, मेरे लिए गुरु का बुलावा काल का बुलावा है और मैं जा रहा हूं, तुम संभाल लेना। और बाबा गए, और पर देखा कि कोई ऐसा बहुत खास काम नहीं था जिसके लिए गुरु ने बुलाया था, लेकिन फिर भी ये बाबा की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति थी। तो ये ऐसी कई विशेषताएं थी बाबा के अंदर जिसके कारण शिव बाबा ने उनको अपना रथ चुना। तो ऐसे ही शिव बाबा हमारा गुरु है ना। और दुनिया में गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, माना गुरु मंत्र देता है। गुरु का रोल क्या होता है? तो लोग जाएंगे उनके सामने कि गुरु हमारे सिर पर हाथ रख दे तो ये हमारे लिए वरदान हो जाएगा, यानी ये हमारे लिए सहज हो जाएगा, वो हमें प्राप्ति हो जाएगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएंगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, हम देखते थे हमारी दादियों के आगे भी लोग सिर ऐसा करके कहते थे, दादी जी हमारे सिर पे हाथ रख दो, तो सिर पे हाथ रख दो और ये बोल दो, हमारे लिए कुछ वरदान दे दो। तो क्या समझते हैं, तो कौन सा आयुष्मान भव, हाँ क्या बोलते हैं गुरु, आयुष्मान भव, निरोगी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, यही होते हैं उनके जो आशीर्वाद के शब्द होते हैं या बोल होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी मंत्र भी मिला हुआ है और ये वरदान भी मिले हुए हैं। तो मंत्र बाबा ने हमें दिया है, जैसे वो गुरु मंत्र देते हैं, कौन सा मंत्र है, मन मना भाव और मध्याजी भाव। वो गुरु मंत्र देंगे तो वो मंत्र होंगे, इतनी बार मंत्र जपो, जब टाइम मिले तब मंत्र को जपते रहो, लेकिन अपना मंत्र किसी को मत बताना, ये मंत्र आपका मंत्र है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, सबको बताओ, सबको बताओ, कोई भी रहना चाहे जिसको ये पता ना हो कि हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमें बाबा से इतना वर्षा मिलेगा और हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा के मंत्र की ये विशेषता है कि हम वो मंत्र से बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव भी करते हैं। फिर बाबा ने हमें आयुष्मान भव का वरदान दिया है, उसका मतलब है कि इस ब्राह्मण जीवन में हमारी आयु संगम युग तक रहे, पूरा संगम युग हम ब्राह्मण जन्म में जीते रहें, ये आयु है। वो शरीर की आयु की बात नहीं ना, शरीर की आयु के लिए तो अचानक का पार्ट, एवर रेडी का पार्ट बाबा कहता है, लेकिन जब तक हम हैं इस संगम युग में तब तक इस ब्राह्मण जन्म में हम जीते रहें, ये है आयुष्मान भव। नहीं तो क्या होता है, फिर माया के वश हो गए तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती बाबा बोलता है, तो उसको कहेंगे छोटी आयु। फिर निरोगी भव बाबा कहता है, यानी आयु के साथ साथ व्यक्ति स्वस्थ होता है तब लंबा जीने का मजा है, अगर वो रोगी होता है तो फिर कहता है भगवान ऐसे शरीर से तो अच्छा है कि ना हो। तो फिर कौन सा निरोगी माना, माया के रोगों से, जो माया की बीमारी लगी हुई है आत्मा को, उस बीमारी से हम निरोगी रहें, माया से भी हम मुक्त रहें ब्राह्मण जीवन में। और फिर पुत्रवान भव, धनवान भव, तो कौन सा धन, वो स्थूल धन की बात नहीं, लेकिन जो अविनाशी ज्ञान धन बाबा ने हमें दिया है, उस धन से सदा धनवान बाबा ने हमें बना दिया है ना, जो अविनाशी ज्ञान धन मिला है वो फिर स्थूल धन को अपने आप लाता है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, दुनिया में भी जो ज्ञानवान होते हैं वो बहुत अच्छा धन कमाते हैं, तो यहाँ भी बाबा ने हमें जो ज्ञानी बनाया है वो ज्ञान अपने आप ही प्रकृति को दासी बनाने वाला है, तो हमारी आवश्यकताएं तो सहज पूरी होती हैं, तो वो धन से धनवान। और फिर आने वाले 21 जन्मों तक तो हम पद्मा पदम पति बनने वाले हैं, बाबा ने बता ही दिया कि जितनी हमारी आवश्यकता होगी उससे कितना गुना हमारे पास धन होगा। और पुत्रवान भव माना ये संतान नहीं कि एक दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, इसकी बात नहीं, लेकिन जिनको भी हम नया जन्म देते हैं, यानी इस अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म के में बाबा का बनाते हैं, तो वो बच्चे यानी उनकी पालना की जिम्मेवारी किसकी है, किसकी होती है, जो निमित्त बनते हैं फिर वही उनकी पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर रचयिता हो, बेहद के मास्टर रचयिता हो, दो तीन बच्चों के माता पिता नहीं, लेकिन विश्व की आत्माएं, इसीलिए बाबा जगत माता का टाइटल देते हैं ना, मैं ये परिवार की माता हूं नहीं, एक परिवार को पालना देने वाली हूं नहीं, लेकिन पूरे विश्व ही जो मेरा परिवार है उन सब आत्माओं को पालना देने का हमारा लक्ष्य है। तो जिन बाबा के बच्चों को ज्ञान में चलाते हैं, फिर वो कोई भी होते हैं, है ना, उन सभी को पालना देना। तो इतने बेहद के वरदान बाबा ने हमें दिए हैं, इसीलिए बाबा कहता है मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, उन गुरुओं की तरह मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, जन्मते ही हमें ये वरदान मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो वरदान बाबा ने हमें दिए, जैसे रोज हमें मिलता है, मुरली में रोज वरदान होता है, उनके स्मृति स्वरूप बनना, जैसा समय वैसा वरदान मुझे याद आए। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, जो भी सुमान है हमारे वो सब विशेष हैं, तो समय पर वो मुझे याद आएगा तो वो वरदान मुझे विजयी बना देगा, यानी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो मेरे लिए सहज हो जाएगा। लेकिन अगर हम विस्मृति में आ गए, अगर हम भूल जाते हैं, तो फिर वो वरदान हमारे लिए होते हुए भी जैसे वो काम नहीं करता है। फिर बाबा हमारे खुदा दोस्त हैं, जैसे दोस्त को सब अपने दिल की बातें कहते हैं, है ना, पर कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने दोस्त को भी नहीं कह सकते ना, वो बहुत पर्सनल होती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये बात कह दी तो कहीं आज ये हमारे हैं, कल कहीं किसी को इन्होंने कह दिया तो वो बातें भी हम बाबा को सुना सकते हैं। बाबा हमारा ऐसा दोस्त है कि वो कभी भी हमारी बात किसी को नहीं कहेगा। पर कई बार कई क्या सोचते हैं कि बाबा जो है वो हमारा दोस्त है, साथी है, वो तो ठीक है, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा आकारी है, तो साकार में भी तो कोई होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, कोई साथी कोई सहयोगी होना चाहिए। क्योंकि जब हम कभी बाबा से बातें करते हैं तो बाबा सुनते तो हैं, क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो मन थोड़ा उलझन में होता है, परेशानी में होता है, तो योग लगता ही नहीं है। फिर हम बाबा को बोलते हैं तो पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि बाबा से तो जवाब मिल ही नहीं रहा है, तो लगता है किसी को सुना दें तो थोड़ा मन हल्का हो जाए। तो इसीलिए कोई अपना होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे, नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ज्ञान से समझते, इसको बाबा ने कहा ना, दिमाग के आधार पर नॉलेज है कि नहीं होना चाहिए, पर सचमुच जब ऐसा हो तो मुझे बाबा ही याद आए और बाबा को ही हम अपने दिल की बातें करें। पर मैच्योरिटी देखने में आता है कि हम किसी ना किसी को अपना बना लेते हैं कि हाँ मैंने इससे अपने दिल की बात करनी है, ये मेरे को समझते हैं, ये मेरे को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपने किसी को सहारा बनाया ऐसे समय पर, तो बाबा किनारा कर लेता है कि ठीक है ना, इनको अभी सहारा मिल गया, इनको अभी मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा दिल से मेरा बाबा, तो क्या होता है, बाबा कहता है आपने कहा मेरा बाबा और बाबा आपके लिए हाजिर है, हुजूर आपके लिए हाजिर है। तो इतना बाबा पर हमारा निश्चय अटूट होना चाहिए, है ना। भले कभी परीक्षा होती है, क्योंकि हमारे निश्चय की परीक्षा तो बाबा करते हैं ना, कोई कोई बातें जिंदगी में ऐसी कठिन आ जाती हैं, लेकिन उस परीक्षा में हमें पास होकर के दिखाना है। तो अगर हम निश्चय बुद्धि हैं तो बाबा की मदद हमें जरूर मिलती है। तो इसीलिए बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा साथी है, बाबा ही मेरा फ्रेंड है, मेरा सखा है, सखी है, जो भी हम कहें, माना कोई एक पर्सनल सखी भी मेरी मुझे अलग से नहीं बनानी है। से दुनिया में भी हम देखते हैं जो संबंध होते हैं ना, उन संबंधों में अगर कोई संबंध की कमी है, किसी को माँ नहीं होती तो उसको फील होता है कि मुझे माँ नहीं है, किसी को पिता नहीं होते तो वो भी फील करते हैं कि मेरे पिता नहीं है, किसी को भाई नहीं होता तो वो फील करते हैं कि मेरा भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है तो उन्हें भी फील होता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, होता है नहीं होता। तो दुनिया में हर एक संबंध अलग अलग हैं और इसीलिए उस संबंध की जब कमी होती है तो वो उनको वो कमी महसूस होती है। लेकिन शिव बाबा तो ऑल इन वन है ना, तो बाबा से हमारे सर्व संबंध है, तो कभी भी कोई संबंध की कमी हमें महसूस नहीं हो सकती। बस जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है वो संबंध हम बाबा से अनुभव करें, तो बाबा बंधा हुआ है हमें उस संबंध का अनुभव कराने के लिए। तो जब भक्तों ने भी अनुभव किया, हम सुनते हैं ना भक्तों की कहानियां, जो भी बाबा के सच्चे भक्त हुए, ऐसे आज के भक्त नहीं, जो स्वार्थ वाले भक्त होते हैं वो नहीं, लेकिन जो सच्चे भक्त हुए बाबा के, उन्होंने जब भी भगवान को याद किया उन्हें भगवान की मदद समय पर मिली। जैसे मीराबाई के लिए कहते हैं कि उसके लिए जहर का प्याला भी क्या हो गया, वो जहर नहीं रहा, अमृत बन गया। तो ऐसे सब बहुत से मिसाल हैं। तो बाबा हमारा साजन भी है, अगर साजन का संबंध है तो वफादारी चाहिए उसके अंदर। इस संबंध में दुनिया में भी लोग वफादारी ही पसंद करते हैं ना, अगर कोई बेवफा होता है इस संबंध में तो संबंध टूट जाता है, संबंध रहता नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से दिल की बात करूं, जो भी करूं वो तुम्ही से करूं, है ना। जिसको बाबा ने कहा कि हम बाबा के पिताव्रता और पतिव्रता, हमारा पिता भी वही है तो पति साजन भी वही है। तो चाहे भाई हो, भाइयों के लिए भी अगर आप वो संबंध का अनुभव करना चाहें, आत्मा रूपी सजनी है ना, तो शिव बाबा तो सभी आत्माओं का साजन है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर की तो बात ही नहीं है। तो सभी आत्माओं का यानी सजनियों का एक साजन है शिव बाबा। तो ये संबंध में जो सबसे हम कहेंगे समीपता का अनुभव बाबा के साथ, उस प्यार का अनुभव हम करें, जब भी इस संबंध का अनुभव करते हैं, तो कभी भी बाबा कहता है कि दुनिया में इस तरह के संबंध पर अगर आप आपकी किस नजर जाती है, तुरंत बाबा के साथ आप उस संबंध का अनुभव करेंगे तो माया इस रूप में भी फिर विघन रूप नहीं बनेगी। मैं कभी कभी फेल होते हैं तो इस संबंध के कारण ही फेल होते हैं, माया जो आती है वो इस रूप में कई बार ज्यादा आती है। फिर बाबा बच्चा भी है, बाबा क्या कहते हैं, पहले मुझे अपना वारिस बनाओ फिर मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए अपना वारिस बनाऊंगा। तो हम पहले बाबा को देते हैं तन मन धन, हमने बाबा पर वारी किया, जैसे माँ बाप बच्चों पर सब वारी करते हैं, अपना तन अपना समय बच्चों को के लिए लगाते हैं, अपना धन बच्चों के लिए लगाते हैं, कितना त्याग करते हैं बच्चों का जीवन बनाने के लिए। तो फिर जो बच्चे हैं उनमें एक बच्चा मेरा शिव बाबा भी है, जितना हम उनके लिए खर्च करते हैं, मानो आपके दो बच्चे हैं, आप उनके लिए जितना खर्च करते हैं ना, कितना परवाह नहीं करते हम कि कितना भी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कितना भी खर्च हो रहा है, कितनी भी मेहनत लग रही है, लेकिन हमें करना है क्योंकि हम जिम्मेवार हैं इनके, ऐसा समझते हैं। तो फिर शिव बाबा जो हमारा बना है अभी, उसके कार्य के लिए भी कौन जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार हैं। तो जितना हम उनके लिए खर्च करते हैं उतना ही हमें बाबा के लिए भी खर्च करना है। और ये बाबा को देना नहीं है, बाबा तो हमेशा कहता है कि बाबा को देना, कोई बाबा को थोड़ी चाहिए, लेकिन बाबा से वो पदम गुना लेना है। तो भविष्य में तो बाबा हमें कितना गुना करके उसका रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन अगर हमने बाबा को अपना बच्चा माना तो फिर हम दिल से वो बाबा की सेवा के लिए सदा हैं। यथा योग्य यथा समय की बात नहीं, लेकिन बाबा का भी हिस्सा है, जो भी हम कमाई कर रहे हैं, जो भी हमारा समय है, वो बाबा के लिए भी हमें उतना देना है जितना कि हम अपने लौकिक बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो वो लौकिक बच्चे तो कभी धोखा भी दे सकते हैं ना, बुढ़ापे में चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, लेकिन शिव बाबा कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, वो तो सदा ही निभाने वाला है। तो ऐसे बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो हमें क्या अनुभव होगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्यार जो बाबा का है, जो लवलीन स्थिति बाबा बोलता है, बाबा की मोहब्बत मेहनत को खत्म कर देती है। तब हमारा सहज योगी जीवन होगा, योग में मेहनत नहीं होगी कभी भी, बाबा याद है ही। इसीलिए बाबा कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, सुबह अमृत वेले माता पिता मुरली सुनते हैं, वो हमारा शिक्षक है, सारे दिन में वो हमारा साथी है, वो कर्म हम कर्म करते हैं कर्म योगी बनकर, तो बाबा मेरे साथ है और सर्व समर्थ मेरा साथी है, तो उस कर्म में हमें कितनी मदद हो जाएगी कि जो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं 4 घंटे में, वो काम हमारा आधे समय में पूरा हो जाएगा, क्योंकि किसकी शक्ति हमारे साथ जुड़ गई, स्वयं बाबा हमारे साथ है, तो उसकी शक्ति से हमारे सब काम सहज होते चले जाएंगे। तो बाबा को साथी बना करके हम दिन भर में कर्म करें, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे अपने कंपेनियन के रूप में, और जब कभी भी थक जाते हैं बाबा कहते हैं तो माँ के रूप में से बाबा की गोदी में आ जाओ, सोते समय भी ना, नींद के समय भी हम संबंध निभा सकते हैं। बाबा कहते हैं संबंध निभाने की प्रवृत्ति नींद में भी चलती है कि हम बाबा की याद की गोदी में सो जाते हैं तो वो योग निद्रा हो जाती है, तो वो नींद भी कमाई कराने वाली हो जाती है हमारी। मम्मा बाबा की ये विशेषता थी कि उनकी जो सबसे ज्यादा कमाई की उन्होंने, वो योग निद्रा की कमाई, कभी भी बाबा की याद के बिना वो नहीं सोते थे। तो कब सोते समय, इसीलिए बाबा हमें चाट देने के लिए बोलते हैं कि जब हम बाबा को चाट देंगे तो हम बाबा को याद करेंगे और बाबा की याद में हम सो जाएंगे, तो वो नींद भी हमारी क्या हो जाएगी, बाबा के साथ ना? तो इस तरह से हम महसूस करेंगे कि वो बाबा की याद से हमें अतींद्रिय सुख, ईश्वरीय सुख का अनुभव निरंतर होगा, हम निरंतर योगी बन जाएंगे और सहज नष्टो मोहा हो जाएंगे। जब सारा मेरापन बाबा के साथ है, जब सभी संबंध बाबा के साथ अनुभव हो रहे हैं, तो बाकी संबंधों में आकर्षण होगी नहीं, बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि जो संबंध हम मिस करते हैं उसमें बुद्धि जाती है, तो हमारी बुद्धि जब कहीं और जाएगी नहीं तो फिर नष्टो मोहा सहज बन जाएंगे। और यही हमारा लास्ट पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, अगर समझो बच्चों में मोह होता है, ऐसे होता है ना, माताओं का मोह ज्यादा बच्चों में होता है, बेटों में होता है, तो बाबा को ही बेटा बना लिया तो फिर वो जो रग है उस रग को हम तोड़ सकते हैं, उनके लिए हम सेवा पर हैं, बाबा ने हमें इनकी सेवा में रखा है, इन आत्माओं की सेवा में रखा है। तो इस तरह से हम ये जब संबंध निभाते हैं तो हमें लगता है कि सहज ही हम विघ्न जीत बन गए, माया जीत बन गए। बाबा के साथ है तो माया की हिम्मत ही नहीं है कि माया हमारे सामने आए। तो इसीलिए योग माना ही सदा बाबा के साथ इन संबंधों का हम अनुभव करते रहें। ओम शांति।
तेरी पास